نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلا سبق شروع کریں گے. ہمارا آج کا سبق سورت بقرہ کی آیت نمبر 60 سے 61 ہے، آیت نمبر 60 to 61، اور ہمارے پورے کورس میں سے سب سے چھوٹا لیسن ہے آیتوں کے اعتبار سے، یعنی صرف دو آیتیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان دو آیتوں کے اندر بھی کیا دنیا چھپی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اتنا کچھ غور و فکر کا دیتے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. چند باتیں سبق سے پہلے، سبق کے بارے میں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ آج کے جو پارے کا جو مین تھیم ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے پورے سبق کا مرکزی نقطہ کیا ہے، کہ آزاد قومیں غلام کیوں بنتی ہیں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنا کر ہم سب کو اس میں بہت کچھ سوچنے کو دیا کہ ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں. پورے سبق میں جو ہمیں مرکزی نقطے ملیں گے وہ کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ایک بڑے مقصد کے لیے چنے اور ان کو وہ ساری خوبیاں بھی دے جو اس مقصد کو پانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ قومیں ایک وقت میں اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہیں اور ان کو دنیا کے پسے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں غلام بنا دیا جاتا ہے. آپ آج پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑی سی ہسٹری ان کی مزید، کہ کس طرح بنی اسرائیل جو اپنے وقت کا ایک بڑا خوبصورت گروہ تھا، لیکن اس دور کے بالکل کمزور لوگوں کے ہاتھوں پسنے لگے. اور اس سبق میں آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اعلیٰ کے بدلے ادنا کو مانگنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جینے کا سبق دیتے ہیں، لوگ اس کی جگہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چل جاتے ہیں. آیت نمبر 60 کو دیکھیں گے تو اس میں ہمیں مین تھیم ملے گا کہ اللہ کی بانٹ عدل والی ہے، ظلم والی نہیں. اور آیت 61 کے اندر سے جو بنیادی نقطہ ہمیں دکھے گا وہ ہے ذائقوں کے حریص، ذائقوں کو پانے والے. ہم اس پورے سبق میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں لوگوں کو کتنے موقع دیتا ہے. بنی اسرائیل کو بھی دیا، لیکن انہوں نے اس کو پیچھے ڈال دیا. اور آج کے سبق سے ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا جو ہمارے بچے بھی اکثر پوچھتے ہیں، اگر ہم امت محمدیہ ہیں تو آج ہم پسے ہوئے کیوں ہیں، آج ہم غلام کیوں ہیں، آج ہماری دنیا میں عزت کیوں نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب زندگی کا کسی بھی چیز کا انسان کو مقصد بھول جاتا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ اسی قسم کے حالات ہوتے ہیں. آئیے آیتوں کو شروع کر کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور محاسبہ اپنا. سبق بہت کریٹیکل ہے، اور ایسے سبق سنتے وقت ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے خاندان آ جاتے ہیں، ہماری فیملی آ جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں اچھا ان کو پوچھو، ان کو دیکھو، لیکن ہم نے اور آپ نے مقصد پہ نظر رکھنی ہے، اور میں نے خود کو دیکھنا ہے. ہر ایک ہم ایک خاص حساب سے ایک آیت کا حصہ، جہاں تک کہ ہمارا موضوع ایک ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ساتھ لیں تاکہ آپ کا ذہن بھی ساتھ ساتھ چلے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 60. پہلے ہم اس کا ہلکا سا ترجمہ دیکھیں گے وضاحت کے ساتھ. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. کب مانگا تھا؟ صحرا میں. کون سے صحرا میں؟ تیخ. پیچھے بات ہو چکی، وادی ہے تیخ کے اندر. کیا ہوا؟ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا. کیسے کہا؟ وہی کے ذریعے کہا. اِدْرِبْ، مارو، ٹکراؤ. کس کو؟ دی عصا کا، اپنے عصا کو. کہاں لگاؤ یا کہاں مارو؟ الحجر، پتھر پر. یعنی موسیٰ نے پانی مانگا، لکو دک صحرا میں کھڑے تھے، پانی کی درخواست کی، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو. اب موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا. ہوا کیا؟ فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. 12 چشمے کیوں پھوٹے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. بس یہاں دیکھیے کہ موسیٰ نے کوئسچنس نہیں پوچھے، کیوں ماروں، کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہے، پتھر پہ ایسا ماروں، یہ کیا ہے، چونچ رہا نہیں. بلکہ یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ نے مار دیا، خود ہی کہہ دیا ہم نے کہا کر دو، رزلٹ بتا دیا. یہاں سے پہلی بات تو عمل کی یہی لکھ لے کہ اللہ کے حکموں کو سن کر چونچرا نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی بات بتانے والوں کی بات سن کو بھی انسان کے اندر سمینا واتانا کا جذبہ جب رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہی برکتیں آتی ہیں جو کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتھروں میں سے پانی نکل آتا ہے. انتہائی سبمیشن کی بات اس میں ہمیں دکھتی ہے. خیر، چشمے نکلے. قد علیم کل اناسن، बेशक जान लिया हर गिरोह ने, ये जो लफ्ज़ उनास है ना, ये इंस की जमा है। इंसान का लफ्ज़ जिन्नो इंस हम बोलते हैं, उनास उसी से जमा का लफ्ज़ आता है। और असाका का लफ्ज़ जो है ये लाठी के मानों में, हजर वैसे तो पत्थर के लिए आता है, लेकिन इससे मुराद एक ख़ास पत्थर था जिसके साथ अल्लाह ताला ने ये मामला कर किया, और ये भी एक मौजज़ा था उस दौर का। क़द अलिमा कुल्लु उनास मशरबहुम, हर गिरोह ने अपना मशरब ढूंढ लिया। ये जो लफ्ज़ है ना मशरबहुम, इसको आप अलग करेंगे ना तो मशरब और हुम दो लफ्ज़ हैं। मशरब मफ़ाइल का वज़न है, मुराद क्या है, पानी पीने की जगह। उर्दू में इसको घाट कह देते हैं ना, घाट, पानी पीने की जगह को पा लिया, यानी जहाँ पे जाके पानी पीना होता है। जब निकल आया पानी तो अल्लाह ताला ने आप पूरी कौम को क्या कहा, अगर आप थोड़े सभी से लफ्ज़ों के साथ खेलना सीखे ना, तो शुरू में जो बातें चल रही ना ये वाहिद के सीगे की हैं, सिंगुलर है, क्योंकि सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब किया गया, मारो इद्रिब, वाहिद है, ओनली वन, यू विल डू दिस। लेकिन अब साथ ही सीगे बदल गए, कुलू व शरबू, तुम सब खाओ और तुम सब पियो। यहाँ पूरी बनी इसराइल मुराद है, और जो भी उस दौर के लोग थे, खाओ और पियो। ये गौर व फिक्र कुरान में करेंगे ना तो आपको अपनी ज़िंदगी के गमों का गौर व फिक्र भूल जाएगा, वक्त ही नहीं मिलेगा। गौर किया करें, अच्छा ईद रिब आया है, उर्दू तर्जमे पे चलें अभी तो गौर कर लें, या अरबी नहीं आती कोई बात नहीं है, उर्दू में ही देखिए कि शुरू में कहा कि मूसा तुम इसको मारो, फिर कहा सब खाओ, तो फ़र्क क्या है। फ़र्क यह है कि लीडर के ज़रिए जो काम हो जाता है ना, तो उसका फ़ायदा पूरी उम्मत को मिलता है, ये मतलब है। कुलू वशरबू में सब शामिल हैं, लेकिन एदरिप में सिर्फ लीडर शामिल है। इस नुक्ते को आज समझ के जाइएगा, आज उम्मत मुस्लिमा अगर इस नुक्ते पे गौर व फिक्र कर ले तो अल्लाह की तरफ से रहमतों के दरवाजे खुल जाए उसके ऊपर। चंद लोग काम करेंगे तो उसका फल और उसका फैज पूरी उम्मत खाएगी। अगर आपका नाम उस उन लोगों में शामिल हो जाए ना, तो आपके लिए ज़िंदगी की इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं है। ज़िंदगी जो गुजर गई है ना, उसको पीछे डालें, डोंट वरी, जो होना था हो गया। आज से टुडे नाउ, राइट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं, घड़ी का वक्त देख ले, दिन लिख ले, डेट आज की लिख ले, आज से ये दुआ करनी शुरू कर दें कि अल्लाह मुझे एदरेब वालों में शामिल कर, मैं काम करने वालों में बन जाऊं, मैं पत्थरों में चट्टाने तराश के, पत्थरों के अंदर सुराख करा के पानी निकलने का जरिया बन जाऊं, बाद में लोग उस पानी से खैर ले। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का असा उस पत्थर पर डाला गया, आज हमारे असा लोगों के दिलों पर डलने वाले हैं, और आज का असा कलम है। आज की उम्मत जो मुसलमान कहलाती है, इनका प्रॉब्लम क्या है कि आज इनके हाथों में वो हथियार नहीं है जो लोगों के सख्त दिलों को तोड़ दें। अगले दो रुकू के बाद आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, तो वहाँ भी ये जुमला आएगा जो बार बार आपको याद करवा दूंगी कि कुरान क्या है। कुरान ब्रेक्स द हार्ड हार्ट्स, कुरान सख्त दिलों को तोड़ता है, एंड हील्स द ब्रोकन हार्ट्स। टूटे हुए दिल वाला बंदा जब कुरान की महफिल में आके बैठता है ना, कोई गम खाया हुआ, कोई चोट खाया हुआ, कोई हादसा उसकी ज़िंदगी में हो गया, कोई मौत हो गई, घर टूट गया, तलाक हो गई, कुछ भी हुआ, तो कुरान उसका दिल सीता है, डोंट वरी, अभी आगे देखो, अभी ज़िंदगी बहुत है, बड़ी खैर है आगे, फिर क्या हुआ अगर तुम्हें लोगों ने ठुकरा दिया, लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, अल्लाह जो है तुम्हारी कदर करने वाला, तो मेरी तरफ आके देखो, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। इस तरह जो सख्त दिल लोग होते हैं ना, जो दूर दूर रहते हैं, जिनको दुनिया में हर चीज़ पे वक्त, एफर्ट और माल लगाना आसान लगता है सिवाय दीन के, उनको अगर अल्लाह कभी फिर कुरान में ले आए तो फिर उनके दिल टूटते हैं। और याद रखिए, जब चीज़ बहुत बिगड़ जाती है ना, तो टूटनी ज़रूरी होती है। घर की रेनोवेशन को जहन में रख ले, हल्की फुल्की टचिंग को आप कहते हैं सेटल हो जाएगा, लेकिन जब आप देखते हैं कि नहीं, यहाँ दीवार निकालनी है, ये करना है, इतनी चेंजेस, तो फिर इंजीनियर आके क्या कहते हैं कि नहीं, मेरा मशवरा ये है कि आप इसको रेनोवेट करने की बजाय डिमोलिश करें, पूरे घर को नए सिरे से अपनी मर्जी का बनाएं। इसी तरह याद रखें कि इंसानों की शख्सियत दो किस्म की होती है। मैं और आप ज़िंदगी के एक बिल्कुल दूसरे किनारे से निकल के आने वाले हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े से बिगड़े होते हैं, माहौल का असर थोड़ा सा होता है, खराबियां चलती हैं कुछ ना कुछ, कुरान उनको बस रेनोवेट करता है, वो चमक जाते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल आप मिसाल ले लें अबू बकर सिद्दीक की, मिसाल ले लें हज़रत ज़ैद की, مثال لے لے حضرت علی کی خدیجہ کی لے لے، ہلکی سی ٹچنگ کی ان کی شخصیت نکھر کے سامنے آ گئی، بات واضح ہو گئی. لیکن کچھ لوگ بہت ہارڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، سخت دل، کٹھور، ان کو قرآن توڑتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے. اس میں مثال حضرت عمر کی لے لے، ان کا دل واقعی ٹوٹا تھا تو پھر آئے. ابو بکر اور باقی ساتھیوں نے اللہ کے نبی سے اتنی آیتیں کوئی نہیں تھی سنی ہوئی کہ جس کے بعد دل میں سوراخ ہوں، لیکن عمر نے سنی. کہیں صورت معارج سنے تو دل میں اثر ہوا، کہیں صورت طٰہٰ سنی پھر اثر ہوا، پھر ٹوٹا دل تو اثر ہوا. تو ہم سب اپنے اوپر بھی نظر رکھیں اور اپنے ساتھیوں پہ، کس کا دل کیسا ہے. اگر کوئی سخت دل ہے، ہارڈ ہارٹیڈ ہے، تو پھر تو توڑنا پڑے گا، پھر ڈیمالش کریں، پھر ان شخصیات کو نئے سرے سے قرآن کا پانی دیں، پھر اس کو سجائیں. ہاں جب وہ بنیں گے تو یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ رینوویٹڈ گھر پہ رینوویٹڈ ہی ہوتا ہے، اور جو ڈیمالش ہو کے برینڈ نیو بنتا ہے اس میں وقت، محنت درکار ہے، صبر درکار ہے، لیکن بالکل ایک نئی شخصیت بنتی ہے. یہ باتیں کریں گے آگے، لیکن یہاں صرف اشارہ مقصود تھا کہ اے درب ایک بندے کا کام ہے. بڑے کام تھوڑے لوگ کرتے ہیں. لیڈرشپ کے درجے پہ جو لوگ پہنچتے ہیں بعد میں، وہ مخالف ماحول سے لڑتے ہیں. موسیٰ کا یہ عمل کے پتھر پہ سا مارنا، یہ ایک استعارہ بھی ہے، سمبولک ہے کہ دیکھو تمہیں بھی اپنے ارد گرد ایسے ہی پتھر دل لوگ دکھیں گے، ایم لیس لائف گزارنے والی سوسائٹیز دکھیں گی، ایٹ ڈرنک بی میری، جی اور جینے دو، لیٹ اینڈ لیٹ ٹو لیو. لیکن تم نے ان سخت دلوں کو نرم کرنا ہے، ان کو گدانا ہے. دل گداس باتیں کرو، آنسوؤں سے دل نرم کسی کا ہوتا ہے گھر والوں کا تو آنسو بہاؤ، گلے لگ کے رونا پڑے پھوٹ کے تو رو لو تاکہ ان کا دل نرم ہو. یاد رکھیے ہر جگہ دلائل کے آسان نہیں چلتے. زبان چلائیں گے تو دل سخت دل والا آپ کو اور برا کہے گا. بعض جب ہم دلائل دیتے ہیں، حق مانگتے ہیں زبردستی، جب آپ کے ارد گرد والوں کے دل سخت دکھے نا آپ کو، تو وہاں آپ دوسرے طریقے اختیار کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، لیکن مرد نادا پہ کلام دل فرے بل اثر. آپ 100 حدیثیں یہاں سے سیکھ کے جائیں اور گھر والوں کو سنائیں، اگر سخت دل ہے وہ آپ کو کہے گا حدیث کو تم مانتے ہی نہیں ہیں، تمہیں کیا پتہ یہ بات کی لکھی باتیں ٹھیک ہے کہ نہیں، سب ختم. آپ کہتے ہیں دیکھو اتنی آیتیں پڑھ لی، اتنا لفظی ترجمہ پڑھ لو، کہیں گے بیٹھو آرام سے روٹی پکاؤ. یہ بات دل سخت ہے، کب نرم ہوں گے؟ جب آپ اپنے جذبات کی چاشنی دیں گے. میں نہیں مانتی کہ انسان انسان ہو اور پھر آپ کے آنسوؤں سے پگھلے نا، آپ کی بے بسی، آپ کا سسک نہ، آپ کا بل بلانا نہ دکھے. تو لوگوں کو پہچانیے. آپ سائیکالوجی پڑھیں، قرآن جتنی خوبصورت سائیکالوجی آپ کو سکھائے گا دنیا کا کوئی انسان آپ کو نہیں سکھا سکتا. بڑے سے بڑے سائیکٹرسٹ اس پہ حیران ہوتے ہیں. آپ ہی لوگوں میں سے ایک ساتھی آج نہیں ہے، مجھے چند دن پہلے فیڈ بیک دے رہی تھی اور ان کی آواز سے ان کی خوشی دکھ رہی تھی کہ آپ کو کیا پتہ مجھے قرآن نے کیا دیا ہے، کہ میری تو ڈاکٹر حیران ہو گئی ہے کہ آپ کو کیا مل گیا. صرف دورہ قرآن کا اثر ہے کہ آپ کا تو وہ جو دماغی پرابلمس تھے اس میں سے مجھے اب کچھ دکھ ہی نہیں رہے. آپ سوچئے یہ اتنی بڑی چیز ہے، پتھر کے اندر سے پانی نکلنا، لوگیں گے ہاؤ از اٹ پاسبل، موسیٰ نے مارا ہو گیا. تو آپ سوچئے کہ جب ایک سخت دل انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے. یہ آپ کی اور میری آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے. ایک ٹیچر تھا تو اس نے اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ واٹ آر دا 7 wonders آف دی ورلڈ. آپ نے بھی سنا ہوگا 7 عجیب چیزیں. اسٹوڈنٹس نے گنوانی شروع کر دی. ایک نے کہا کہ تاج محل ہے آگرہ کا، دوسرے نے کچھ جو بھی آپ کو سب نے آپ نے سنے، چائنا کی وال ہے جو بڑے بڑے دنیا میں ہیں، ایسے عجوبے وہ. تو ایک اسٹوڈنٹ خاموش بیٹھی تھی، انہوں نے کہا نو میں ان کو نہیں کہتی. تو ٹیچر نے کہا پھر تم بتا دو، تمہیں کیا پتہ ہے. تو اس نے کہا کہ فرسٹ ونڈر، یعنی فرسٹ ونڈر جو دنیا کا وہ کیا ہے، آنسو کہاں سے نکلتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں. پھر دوسرا ونڈر ہے ٹو اسمیل، محسوس کرنا، دیکھنا، سننا، بولنا، یہ ونڈرز ہیں. لیکن ہم غور ہی نہیں کرتے. صبح و شام ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارا اس پہ کوئی غور و فکر نہیں ہوتا. تدبر کی عادت بہت کم ہے ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو کام کروایا، یہ کیوں کرایا؟ پہلی بات تو نوٹ کر لیں کہ یہ وادی تیح کا واقعہ ہے. وہی 40 سال جو اس طرف میرے لیفٹ ہینڈ کے چل رہے ہیں، اسی کو ذہن میں لے آئیے. اب ظاہر قوم تھی، اس کو اب کچھ چاہیے تھا نا. وانڈر بلائنڈلی والی ان کی کیفیت تھی، چلتے پھرتے تھے سارا دن، ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، شام ہوتی. اب ان کو پانی بھی چاہیے تھا، کھانا بھی چاہیے تھا، ہر انسان ہے کھانا تو مانگے گا. اب موسیٰ علیہ السلام ایک لیڈر تھے، گو کہ قوم نافرمانی کر رہی تھی لیکن روٹی پانی تو پھر ملنا ہی ہے نا. अब कौम मूसा के पास आई और चलते चलते प्यास लगी, कहा कि क्या करें, अब वहां पानी कहाँ मिलेगा। अब यहाँ देखिए मिरेकल्स, यहाँ हमारे लिए एक अकीदे की बातें हैं, बंदा सहराओं में भी पहुंच जाए, जिंदगी का सहरा ले आप, छोड़ें दूसरे डेजर्ट हमने कहाँ देखे, आपकी जिंदगी सहरा वाली कैफियत में भी आ चुकी है, कोई दरवाजा खुला नहीं दिख रहा, सब साथ छोड़ के तन्हा तन तन्हा, कोई असबाब भी नहीं है, नो मीन्स एट ऑल, ना वहां कोई पानी की पाइपें, ना वहां कोई वासा की कोई कंपनी, कोई वहां मोटर, कोई बिजली, कोई मींस थे कि एक सहरा में पानी आए, आप अपने आप को सहरा में ले जाएं, कभी गए हो तो आप याद करें, कोई मीन नहीं होते। और आपको पता है कि सहरा में जब कोई अपने काफले से बिछड़ता है ना, तो लोग बस उस पर इन्ना लीला पढ़ लेते हैं कि अब ये तो भटकता भटकता उतने दिन जिंदा रहेगा जितने दिन बस इसके पास पेट में पानी है, और आखिर में मर जाएगा। और आपको वाकई मैंने उस दिन भी फ्राइडे के लेक्चर में भी सुनाया है कि एक बादशाह जब किसी सहरा में भटक गया तो प्यासा इतना था कि जुबान मुंह में आ रही थी, तो आखिर एक जगह कोठरी को देखी और उनसे कहा कि सिर्फ मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो उसने कहा कि पानी के बदले में मुझे क्या दोगे, कहा मैं तुम्हें अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा, इंसान इतना प्यासा होता है, कहा अच्छा पी लो, पी लिया, जब थोड़ी देर गुजरी तो अब जरूरत थी जिसम से हाजत हो, यूरिनेशन की हाजत हुई, कहा आप मुझे थोड़ी देर फारिग हो लेने दो, कहा इसकी क्या कीमत दोगे, कहा मैं अपनी आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। उस पे उस कोठरी में झोंपड़ी वाले शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी पूरी बादशाही की कीमत पानी का एक गिलास, पहले पीने के लिए आधा आपने दे दिया, अब जिस्म से निकालने के लिए आधा दे दिया। इस पे इंसान गौर करके देखे तो अल्लाह की कितनी नेमतें, सहरा में खड़ा मूसा, कौम है मींस कोई नहीं, मूसा ये ने क्या कहा, पागल हो पानी मांगते हो, मैं कहाँ से लाऊं, कोई नहीं है मेरे पास। आज आप देखिए जितने लोग माली परेशानियों का शिकार होते हैं वो इस आयत पे गौर करें, कोई मींस नहीं, लेकिन मूसा का अल्लाह पे यकीन देखिए, ए दरिब मारो, मार दिया। क्या अल्लाह ताला वैसे ही वहां पानी का एक चश्मा नहीं निकाल सकते थे जैसे पहाड़ों में निकाला, निकाल सकते थे, लेकिन यहां से हमारे लिए अमल के नुक्ते हैं वो नोट कीजिए। पहली बात देखिए कि मूसा ने मांगा तो अल्लाह से ही मांगा, इज तस्का, मांगना रब से है, कोई पीर, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतब, कोई करनी वाला, कोई मुश्किल कुशा वहां नहीं पहुंचा। नबियों से आप पूरे कुरान में अकीदा सीखते जाएंगे कि जब भी मांगो तो रब से मांगो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने बेटे जब भी मांगो तो सिर्फ रब से मांगो, हजरत इब्ने अब्बास छोटी उम्र के थे तो आप अक्सर उनको बड़ी प्यारी नसीहतें करते थे, कभी आपके कंधे पे हाथ रख लेते, कभी वो आपकी ऊँटनी की नुकेल पकड़े होते तो आप साथ साथ उनसे बातें करते। उस वक्त आपने एक मौके में कहा, या गुलाम, ए बच्चे, ए मेरे बेटे, यंग लड़के टीनेजर को कहते हैं कि जब मांगो रब से मांगो। अब वहां कौन मांगेगा रब से, जिसको रब से मांगने की आदत है, ठीक है। दूसरी बात देखिए कि मांगा रब से लेकिन साथ ही फिर ए दरिब अमल भी किया, इससे अमल की बात क्या पता चलती है कि दुआ मांगकर हाथ तोड़कर बैठ नहीं जाना चाहिए, कोशिश तो करनी पड़ेगी। जैसे आज हम अपनी उम्मत और अपने मुल्क के लिए खैर मांगते हैं ना, वहां भी तो अब जरूरत है ना पानियों की और खैर की, चश्मों की, तो फिर उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला कहते हैं, वइज़ तस्का मूसा लिकौमिही, ही अपनी कौम के लिए मांगा। यहां से क्या पता चलता है कि इनफरादी नेमते नहीं मांगनी, इज्तमाई मांगिए। हमारा हाल ये कि हमारे घर में कोई 2 हफ्ते की ग्रोसरी जमा हो जाए तो हम खुश हैं। मैंने ऐसे मंजर देखे, हम जब ह्यूस्टन में थे तो वहाँ एक दफ़ा एक न्यूज़ थी कि हरिकेन आ रहा है, लोगों ने इतनी ग्रोसरी अपने घरों में भर ली, ग्रोसरी स्टोर खाली हो गए, इतनी गैस लेके अपने घरों में रख दी कि गैस स्टेशन ख़त्म हो गए, बाद में वो जो ख़राब खाना घर में था उसकी वजह से कितने दिन सड़ांध आती रही घरों में और कचरे के ढेरों पर। लेकिन क्या ख्याल था, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मैंने लेना है, लीडर ली कौम ही, ये नहीं हो सकता कि कौम भूखी और लीडर पेट भर के खाए, ये नहीं हो सकता कि उनके घरों में तो इतने खाने पीने और उन कौम के लोग जो हैं वो जमीन पे मट्टी चाटने पे लगे हों। यहाँ से लीडरशिप क्वालिटीज देखिए, ये नहीं हो सकता कि आपका पेट भरा और आपके नेबर खाली बैठे हों, ये मिजाज है कौमों के। आज पूरे सबक में हम ये मकासिद नोट कर रहे हैं कि आज़ाद कौमें गुलाम क्यों बनती हैं, साथ साथ एक साइड का हाशिया लिखा के नीचे पाकिस्तान के नाम के साथ अपने हालात भी लिखते जाएं, हम भी तो आज़ाद हैं, आज हम ज़हनी गुलाम क्यों हैं, आज हमारी सोच गुलाम क्यों है, क्योंकि आज हमारे अंदर से लीडरशिप चली गई, वल्ला ही कौम बड़ी खूबसूरत है हमारी, सिर्फ एक लीडर की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लीडर्स आपको सियासी तौर पे दिखते भी हैं। मत सोचिए कि हर सियासतदान बुरा है, यदि नाम लेने की हमारी पॉलिसी नहीं है। कुछ इस वक्त बड़े मुखलसीन हैं जो मुल्क की कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने की, इसकी हिफाजत की, लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, उसकी वजह यह कि अभी वो खुद भी कुरान से नहीं जुड़े हुए। उनके अंदर कौम का दर्द तो बहुत है, लेकिन वो उस दर्द की दवा नहीं ले पा रहे। इस तरह के हालात उन लोगों के दिलों में आते हैं, उनको ये तो समझ आ रही है कि मुल्क के साथ खराबी है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि अपने मुल्क की इस्लाह कैसे करें। एक बहुत ही खूबसूरत कमेंट मुझे मिला, मैं इतनी खुश हुई उसको पढ़ने के बाद। नॉर्वे की हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने अपने वाक जो बातें लिखी हैं, मैं खुश होगी पढ़ के, जो इंग्लिश में काफ़ी लंबी इनकी ईमेल थी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे ब्लॉग के ऊपर। लेकिन इसका खुलासा क्या है, कहती हैं कि मुझे नींद नहीं आया करती थी, रेस्टलेस थी, और मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में दुखी महसूस करती थी, लेकिन इसमें मेरे दिल में एक चीज़ थी, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। ये परसों के सबक में, यानी जो लास्ट सबक है उसके बारे में लिखती हैं कि जब आपने पाकिस्तान का अरबिक लफ्ज़ के साथ मदीना तैयबा से टैली किया तो एकदम जैसे मेरी आंखें खुली। और उसके ऊपर फिर इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है कि मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत थी, और मैंने वाकई मैं अपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सोचती रहती हूँ, लेकिन मुझे कल की तफसीर से ये समझ आई है कि अब हमारे मुल्क का हल क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह लिख लें, वही अल्लामा इकबाल का शेर, आज भी पूरा होने का वक्त आ गया है, कि जिसमें वो कहते हैं कि औरत उठ कुरान को पकड़, कि तेरे कुरान पढ़ने ने उमर के दिल की हालत को दगरदूं कर दिया था। फारसी का शेर है, हजरत उमर की बहन ने कुरान पढ़ा था तो उमर मुसलमान हुए थे ना, तो वो कहते हैं कि उम्मते मुस्लिमा की औरत, ए माँ, ए बहन, बेटी, उठ कुरान पढ़ और अपने घरों में अब सुना, तेरे कुरान पढ़ने से उमर का दिल बदला था। इंशाल्लाह आज हम पूरा, मैं कहती हूँ आज का सबक ही पाकिस्तान के नाम कर देना तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे मुल्क की हालत भी बदलेगी, और अब बदलनी शुरू हो रही है कब से, जब से औरतों के हाथों में कुरान आ गए। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत हमें मुल्क दिया, कौन सी नेमत है दुनिया की जो हमारे मुल्क में आज नहीं है। आप हैरान होकर रहेंगे, ये जो इतनी दुश्मनों की नजरें हैं वो क्यों हैं, बेवकूफ़ तो नहीं होता दुश्मन, खबरें तो हम पीछे उनकी सुन चुके हैं कि जीनियस कितने हैं। उनको पता है कि ये सोने की चिड़िया है, बुलबुल है। एक पूरी वीडियो है हमारे पास, किसी वक्त आपको यहाँ दिखाएंगे अगर आपके नसीब में हुआ, और उसमें पूरी हिस्ट्री है बरेस्गीर पाको हिंद की, उर्दू में है। वो मज़े की बात सबसे, कहाँ से ये उठ के लोग यहाँ से वहाँ क्यों गए, वहाँ की मिट्टी और मक्खियाँ लेने, उनको पता है वहाँ खैर है। आज भी वो एक इतना बड़ा हब है कि अल्लाह ना करे अगर हमारे मुल्क पे दुश्मनों का कब्जा हो जाए, ये सब ईरान, इराक, ये सब गोल पट्टी सारी उनकी हो जाती है। ये एक डोर है, एक दरवाज़ा है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया हुआ इस वक्त, और इसके अंदर खैर बहुत है। लेकिन आज उम्मते मुस्लिमा और पाकिस्तानी कौम क्यों परेशान हो गई कि वो आज इन चीज़ों से सबक नहीं ले रही। अभी सिर्फ इज़्ज़त तस्का मूसा अली कौम ही पे पहुंचे हुए हम लोग, आगे कितने सबक है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कटने वाले मरने वाले साथी जो होते हैं ना, ये कौमों का नसीब बनाते हैं। मुझे एक और भी बड़ा खूबसूरत कमेंट इस वीक में मिला, बहुत ही खुशियाँ मिली। एक साथी थी हमारी, वो अमेरिका से नॉर्वे गई हुई थी, तो ख्वाहिश होती है जैसे आपकी भी दिल में मोहब्बत होगी, उनके भी थी, तो वो देखना चाहती थी, तो वो देख के आई, मिल के आई, तो मुझे उन्होंने ईमेल में जो लिखा वो सारी ईमेल तो छोड़ दे, जो मेरे लिए सबसे खूबसूरत जुमला उनका था, वो कहती कि मुझे वहां जाके ये वो लगा, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे वहां लगी वो क्या लगी, बेलॉस और वर्थलेसली काम करने वाले साथी। कि आपके पास इतने खूबसूरत साथी हैं वो, कि इंसानों से नसीब बनते हैं। ये लकड़ी की दीवारें, मिट्टी की, चूने की, सोने की कुछ भी नहीं है, लोग पैदा करने हैं। अगर आपको उम्मत बनानी है ना, तो आपको नेशन पैदा करनी पड़ेगी, कुछ को डिमोलिश करके और कुछ को रेनोवेट करके। ली कौम ही, कौम का दर्द पैदा किया तो फिर हुआ, अकेले होते कहते अल्लाह मैं प्यासा हूं, मैं मर गया, मैं लीडर हूं, तो फिर इस कौम का क्या होगा, तो मुझे ही पानी का एक गिलास पिला दे, और उनका ख्याल होता कि अल्लाह इतना तो दे ही नहीं सकता, आपको तो लाखों में थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा दे। नहीं, उनको अल्लाह के ऊपर यकीन था। यहाँ से एक और नुक्ता नोट कीजिए कि मूसा को अल्लाह के खजानों पे यकीन था कि अल्लाह की ज़ात सारी कौम को भी पिला सकती है। हम कहते हैं अल्लाह चलो ये नहीं थोड़ा ही दे दे, यानी बहुत ही मुझे हंसी भी आती है बाद सफा कुछ लोगों की सोच पे, क्या कहते हैं, कहते हैं अच्छा अल्लाह मेरे नसीब में बेटा नहीं तो बेटियों ही दे दे।
हाँ
यानी हम थोड़े पे राजी हो जाते हैं, तो जो थोड़े दिल वाले छोटी सोच वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अल्लाह के पास इतना है ही नहीं, नाउजु बिल्ला, चलो अल्लाह मुझे ही दे दे, नहीं ली कौम ही, अल्लाह मुझे पूरी कौम के लिए चाहिए। जब इस तरह तड़पने वाले लीडर उम्मत मुस्लिमा को मिलेंगे ना, फिर देखिए नसीब जागेगा। दो तरह के लीडर्स की बड़ी जरूरत है हमें आज इस काम के लिए, एक दीनी रहनुमा और एक दुनियावी रहनुमा। अपने लिए लिख लें कि दीन के लिए भी जब ऐसे तड़पने वाले लोग हमें मिलेंगे ना, और माशाल्लाह बहुत है, हमारा किसी से सामना हुआ कि नहीं हुआ ये हमारा नसीब है, लेकिन ऐसे लोग बहुत है कि जो वाकई अपनी कौम का दर्द रखते हैं और उनको पता है कि हमने अपनी कौम के लिए खैर मांगनी है। और दूसरी किस्म के लीडर हमें चाहिए, दुनियावी लीडर, जिसको सियासी कौमी हीरोज कह लें। जब लोग लेने वाले की बजाय देने वाले बनेंगे ना, तो फिर उम्मत में बड़ी खैर आएगी। खैर, अल्लाह ताला से मूसा ने मांगा, कहा ठीक है, इदरिब बियसाकल हजर, पत्थर पे मारो। यहां से असबाब को इस्तेमाल करने की तरफ भी इशारा है, ये नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। मूसा बैठ के दुआ करते, अल्लाह ताला बारिश दे देता, लेकिन बारिश नहीं हुई। यहां से एक और नुकता नोट कीजिए, मूसा अलैहि सलाम कहते अल्लाह ताला पानी चाहिए, आसमान से बारिश उतरती, बारिश भी तो आ सकती थी ना, और उस बनी इसराइल को पिला देते, नुकसान क्या होता? गौर करें, सोचें, वक्त नहीं है बीच में इतनी शेयरिंग का, मेरा दिल बहुत चाहता है मैं इस तफसीर के बीच में भी आपसे बातें लूं। जी
बारिश तो रुक जानी थी, और ये जो
शाबाश,
चश्मे किए हैं तो चश्मों के आगे जो उन्होंने फिर फल भी मांगे हैं तो उसकी आगे भी
एक बात ये भी है, माशाल्लाह इन्होंने अच्छी बात कही। कोई और भी जहन में आ रहा है कि बारिश की जगह चश्मों से क्यों पानी आया? जी आप प्लीज,
चश्मे और बारह चश्मे के जरा लोग ऑर्गेनाइज भी हैं,
ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है जी। पीछे से आप फरहत,
मुझे जो समझ आया, मेरे ख्याल से चश्मों का पानी ज्यादा देर तक रहता है जबकि बारिश का पानी बह जाता है।
ठीक है, शाबाश, सारी बातें बिल्कुल ठीक है। नंबर आप देखिए कि अगर बारिश होती तो वो वन टाइम होती, हो सकता है कि बारिश का पानी इतना ज़्यादा होता कि फ़ायदे के बजाय नुकसान शुरू हो जाता, फिर दोबारा प्यास लगती, क्या होता? इनको अल्लाह ताला ने चश्मे से दिया, और रिवायात में आता है इसके बारे में बहुत सारी बनी इसराइली रिवायतें हैं कि ये एक चकोर किस्म का, ऐसे क्यूबिक किस्म का छोटा सा पत्थर था। हमारे जहन में क्या था, बहुत बड़ा पत्थर होगा तभी इसमें से पानी निकला, बिल्कुल जैसे कभी आपने घरों में ये छोटा सा मॉडल नहीं काबा का बना हुआ दिखा होता है, बस अल्लाह ताला ने उसको इस्तियारे के लिए रखा हुआ था। और कहते हैं कि वो चकोर था, और उसमें से इस नता अशरत आईना 12 निकले। 12 क्यों निकले? क्योंकि कबीले उस वक्त तक बनी इसराइल के बारे थे। यहां से आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी कि जितने लोग हों अगर उतना इंतजाम हो तो काम बहुत अच्छा होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को ग्रुप्स में बांटा हुआ था, और हर कबीले का एक एक बड़ा सरदार भी था, आप कह लें कि 12 ग्रुप्स थे और हर ग्रुप का एक ग्रुप इंचार्ज भी था। और उनको अल्लाह ताला ने इस चीज़ में से फ़ायदा दिया कि क्लासिफिकेशन हुई। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि किसी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए लाजमी है कि वहाँ जितने लोग रहते हैं उनके लिए पहले बेसिक रिसोर्सेज बनाए जाए। खाना पीना जिस कौम को नहीं मिल रहा होगा और भूख से लोग खुदकुशियाँ करते फिरेंगे, उनको क्या लगे आपके वेपन से, और उनको क्या लगे आपकी बड़ी इमारतों से और आपकी यादगारों से और आपके बुलंदोबाला महल्लात और जहाज़ों और कश्तियों से। तो यहाँ से पता चलता है कि लोगों को उनकी ज़रूरियात मिलनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं पत्थर में से पानी कैसे निकल सकता है, ये वो लोग होते हैं जो मौजज़ात का इनकार करते हैं। तो उनको सूरत बकरा की आयत 74 जाके पढ़ा दीजिए, जो आगे ही हमारे सबक में आने वाली है इंशाल्लाह, कि वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, और पत्थरों में तो कुछ ऐसे हैं कि उनसे नहरें फूट पड़ती हैं। आज भी आप देखिए जो पानी वो निकलते हैं वो कहाँ से, आपको इलाकों जाने का मौका मिलेगा। कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उस पर असा मारते थे, तो इस तरह। और हर कबीला, जैसे छोटा ग्रुप है बड़ा ग्रुप है, उनके साइज से कदालिमा कुल्लूना से मशरबा हूँ, हर गिरोह ने अपना हिस्सा पहचान लिया। जो थोड़े लोग थे उधर पानी का फ्लो कम था, जो ज़्यादा थे उधर ज़्यादा था। ये नहीं कहानी हमें सबको बड़ा ही चाहिए, हमारा हाल तो यही है ना, ले लेते हैं इकट्ठा प्लेटों में, प्लेटें भर के, चाहे खाया जाए ना खाया जाए, लेना ज़रूर है क्योंकि फ्री मिल रहा है। नुकसान क्या होता है कि चीज़ ज़ाया होती है। तो अल्लाह ताला ने इधर से ये हम सबको बता दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की और अल्लाह ने वो पानी दे दिया, और काकुलू वशरबू, खाओ और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ से। फिर देखिए मूसा के असा से पानी निकला, लेकिन रिज़्क़िल्लाह, मूसा के असा में भी तासीर कब होगी? जब अल्लाह चाहेगा। आप जाइए खूबसूरत से खूबसूरत स्टिक लेके दुनिया के खूबसूरत से खूबसूरत पत्थर पे मारिए, पानी नहीं निकलेगा। اسی طرح آپ بعض دفعہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا دل نرم ہو جائے. مرد ناداں پہ کلام دل فرے بے اثر. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کلو و شربو, کھاؤ اور پیو, من رزق اللہ, اللہ کے رزق سے. ہاں ولا تعصوا فی الارض مفسدین, زمین میں فسادی بن کر نہیں جینا, یہ ہے اصل بات. ہمیں کیا اس سے سبق مل رہا ہے کہ نعمتیں پانے کے بعد شکر گزار بننا ہے تاکہ مزید نعمتیں ملیں. جو لوگ نہ شکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں نا, ان کی سزا دنیا میں ان کو ملتی ہے. سورت ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے تم کو پکارا کہ تم شکر کرو گے تو تمہیں اور ملے گا, اور نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے, دوسرا اس آیت کے ساتھ ہمارے اندر ایک سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی. 14 اگست 1947, ہر قوم کو اپنا آزادی کا دن بڑا پیارا ہوتا ہے, ہمیں بھی بڑا پیارا ہے, لیکن کیا ہم نے اس نعمت کو پانے کے بعد اس کا شکر ادا کیا؟ وہاں اللہ کا قانون نافذ کیا, وہاں سے شرک کو ختم کیا, قوم کو محنت کی عادت ڈالی, سارے سہاروں سے بے نیاز کر کے اللہ پہ نظریں لگانا سکھایا, اللہ سے دعا مانگنا سکھایا. ہم تو ابھی تک دعا مانگنا نہیں سکھا سکے قوم کو. کئی ایسے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, کسی ایک ہی بات ہے, وہ کہتی کہ گاؤں سے ایک ماسی کام کرنے آئی تو کوئی بات ہو رہی تھی تو میں دعا مانگ رہی, تو میں نے کہا دعا مانگے, تو کہتی باجی دعا تو مزار پہ جا کے مانگتے ہیں. یعنی آج آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 70-80% قوم جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ دعا مانگنے کے لیے کسی قبر پہ جانا پڑتا ہے. تو اس تذکرہ موسیٰ سے ہم نے کیا سیکھا؟